निरुद्ध करणाशयः निर्वतीतखिलहारः आस्ते स्थाणुरविचालः तस्यान्तरायोमयैवाभूः सन्न्यस्ताखिलकर्मणः। माया गुण, प्रकृति के गुण उदर का परवर्ती प्रभाव निरुद्ध रुक कर करण आशय इंद्रियां तथा मन निवर्तित रुका हुआ अखिल समस्त आहार इंद्रियों का भोजन आस्ते आसीन है स्थाणु जड़ ईव सदृश अचल स्थिर तस्य उसके अंतराय विघ्न बाधाएं मा एव कभी इस तरह अभूहो हो सन्यस्त तात्पर्य। योग विधि से धृतराष्ट्र सभी प्रकार के भौतिक कर्मों से निषेध अवस्था प्राप्त कर चुके थे। प्रकृति के गुणों के प्रभाव से भुक्त भोगी पदार्थ को भोगने की दुर्दम्य इच्छा का शिकार होता रहता है, किंतु योग विधि से ऐसे झूठे भोग से बचा जा सकता है। प्रत्येक इंद्रिय सदा अपने भोजन की तलाश में रहती है और इस तरह बद्ध जीव पर चारों ओर से मार पड़ती रहती है और उसे किसी भी कार्य में स्थिर होने का अवसर नहीं मिल पाता। नारद ने महाराज युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे अपने ताऊ को घर वापस लाने का प्रयास से उन्हें विचलित न करें। वे अब किसी भी भौतिक वस्तु के आकर्षण से परे थे। प्रकृति के गुणों की विभिन्न क्रिया विधियां हैं, किंतु प्रकृति के गुणों के भी ऊपर आध्यात्मिक गुण हैं जो परम हैं। निर्गुण का अर्थ है प्रतिक्रिया विहीन। आध्यात्मिक गुण तथा इसके प्रभाव अभिन्न है, अतएव आध्यात्मिक गुण को निर्गुण कहकर भौतिक गुण से विभेदित किया जाता है। प्रकृति के गुणों से पूर्णतः अवरुद्ध होने पर मनुष्य आध्यात्मिक मंडल में प्रवेश करता है और आध्यात्मिक गुणों से प्रेरित कर्म भक्ति कहलाता है। अतएव भक्ति निर्गुण है, जिसे ब्रह्म के प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन। उन्हें इंद्रियों के सारे कार्य बाहर से भी रोक देने होंगे और प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियों की अंत क्रियाओं के प्रति भी अभेद्य रहना होगा। इन सारे भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के सारे अवरोधों को पार कर जाएंगे। कौन कह रहा है श्लोक? कौन किसे कह रहा है? नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को। क्यों? धृतराष्ट्र ने गृह त्याग किया है, जो कि इस अध्याय का शीर्षक है, और युधिष्ठिर महाराज जिस दिन उन्होंने धृतराष्ट्र उनके ताऊ उन्हें जब राज्य में नहीं पाया तो महाराज युधिष्ठिर वो बहुत व्याकुल हो गए और चिंतित हो गए। और उस समय नारद मुनि वहां प्रकट होते हैं और नारद मुनि अब उनकी व्याकुलता, उनकी जो चिंता है, उसे दूर करने के लिए इन श्लोकों को कह रहे हैं। और नारद मुनि बता रहे हैं दोनों, संजय और युधिष्ठिर। संजय भी व्याकुल और चिंतित थे, हालांकि दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त और धृतराष्ट्र जिसने भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के विरुद्ध हर कार्य किया, परंतु फिर भी महाराज युधिष्ठिर और संजय ये करुणा भाव दिखाकर, और देखिए यहां पर धृतराष्ट्र सामने नहीं है, ऐसा नहीं कि युधिष्ठिर और संजय वो धृतराष्ट्र को दिखाते हुए कि चाहे तुमने कितने भी गलत कार्य किए हो, हम सहानुभूति जता रहे हैं तुम्हारे प्रति। तो धृतराष्ट्र वहां पर था नहीं। कई बार हमारी करुणा और सहानुभूति किसी के प्रति हम जताते हैं जब वो व्यक्ति सामने होता है, ताकि उसकी नजरों में हमारा मान बना रहे। परंतु प्रामाणिक जो भक्त होता है वो हर किसी का मान सम्मान करता है, चाहे वो व्यक्ति सामने हो या न हो। तो यहां पर धृतराष्ट्र सामने नहीं, और वो भी धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति, कि धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति के लिए तो मानो कोई दूसरा व्यक्ति होता यदि युधिष्ठिर महाराज के अलावा, तो वो कहता चलो पिंड छोटा, ये धृतराष्ट्र इतनी तकलीफ इसने ली जीवन भर, लेकिन हमें कोई व्यक्ति थोड़ी सी तकलीफ दे देता है तो पूरा जीवन भर हम याद रखते हैं उसे। तुमने 10 साल पहले मुझे प्रसाद नहीं दिया था मैं जब आया था। याद रखते हैं, थोड़ा सा कुछ हमारे विरुद्ध हो जाता है तो हम तुरंत आंदोलन मोर्चा खड़ा कर देते हैं। परंतु यहां पर देखिए धृतराष्ट्र ने कौन कौन सी गलतियां की युधिष्ठिर और पांडवों के प्रति, केवल इतनी कि उनके लिए प्रसाद का प्लेट नहीं बनाया, उन्हें मारने का षड्यंत्र जान से, अलग अलग प्रकार के कूटनीतियां। तो नारद मुनि यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को अब समझा रहे हैं कि वो धृतराष्ट्र अब सही पथ पर आ गया है और अब फिर से उसे यहां पर मत बुलाओ। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं फिर से उस धृतराष्ट्र को यहां पर मत बुलाना, क्योंकि इसी राज्य के वजह से उसकी बुद्धि भ्रमित हुई थी, इसी राजमहल इसी राजगद्दी के कारण। तो इन सब से दूर रखो, और क्योंकि धृतराष्ट्र अब वो संभल चुका है और वो अब योग अष्टांग योग में लगा है भगवत प्राप्ति के लिए, उन्हीं भगवान की प्राप्ति के लिए जो आपके आराध्य देव हैं। और यहां पर नारद मुनि इन श्लोकों में भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो संजय जो कि धृतराष्ट्र को बता रहे थे कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अब क्या क्या हो रहा है, तो उसी संजय और युधिष्ठिर महाराज को अब नारद मुनि बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र वहां पर वन में क्या क्या कर रहा है। आगे का श्लोक है, नारद मुनि कहते हैं हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, बहुत संभव है कि धृतराष्ट्र आज से पांचवे दिन अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। बता रहे हैं आने वाले पांचवे दिन पर क्या होने वाला है। तो नारद मुनि जैसे महाजन वो भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि वो भविष्यवाणी क्यों कर सकते हैं, जैसे कि नारद मुनि के विषय में ही एक कथा है कि नारद मुनि वो एक बार उन्हें गंधर्व लोक में पाया गया और वहां पर ब्रह्मा जी ने जब नारद मुनि को देखा तो नारद मुनि पूछे कि अभी अभी मैंने तुम्हें किन्नर लोक में देखा था, अब गंधर्व लोक में, और कभी कभी मुझे समाचार मिलता है कि तुम ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हो, मृत्यु लोक तक, वैकुंठ लोक, तो तुम्हारा ठिकाना क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है। तो नारद मुनि उनसे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक गुण क्या है, वो है सर्वव्यापी। तो भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं और वो भगवान श्री कृष्ण की भावना में मैं हर समय रहता हूं, तो मैं भी सर्वव्यापी होऊंगा। भगवान श्री कृष्ण वो सर्वज्ञाता हैं और मैं उनकी भावना में रहता हूं तो मैं भी सर्वज्ञाता हूं। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी को उत्तर मिल गया। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहे हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, कि हे अर्जुन मैं भूत वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानता हूं। तो यहां पर नारद मुनि धृतराष्ट्र का भविष्य बता रहे हैं कि आने वाले पांचवे दिन क्या होगा। अब देखिए पहले से युधिष्ठिर महाराज चिंतित हैं किस विषय में, कि धृतराष्ट्र एक तो अंधे, पैदाइशी अंधे, अंधों में भी दो श्रेणियां होती है, जो पैदाइशी अंधे होते हैं उन्होंने कभी कुछ देखा भी नहीं, और एक है जो कुछ समय बाद अंधे हो जाते हैं। हालांकि भौतिक संसार में भागवत के अनुसार सभी अंधे हैं, पश्यन अपि न पश्यति, देखते हुए भी दिख नहीं रहा। तो युधिष्ठिर महाराज चिंतित थे, एक तो वृद्ध अवस्था, उसके ऊपर वो अंधे, और उसके ऊपर इतने वो आसक्त ऐशोआराम से। कभी उन्होंने वन में अपना जीवन नहीं बिताया, हर समय राज टाट बाट में अपना जीवन बिताया, तो कैसे वो, और वो भी गांधारी उनके साथ जो स्वयं पट्टी बांधे हुई है। और देखिए ये युधिष्ठिर महाराज इन सब चिंताओं में, और नारद मुनि उनकी चिंता दूर करने के लिए क्या बता रहे हैं, पांचवें दिन राख होने वाले हैं। लो, तुम्हारी चिंता हो रही थी धृतराष्ट्र के विषय में, तुम्हारी चिंता और वो सब राख हो जाने वाली। तो नारद मुनि वो आगे देख रहे हैं भविष्य में क्या होने वाला है, और भविष्य को देखकर युधिष्ठिर महाराज को सत्य बता रहे हैं। तो नारद मुनि जैसे जो महाजन हैं, जो हर समय कृष्ण भावना भावित रहते हैं, वो वर्तमान स्थिति को भी जानते हैं और भविष्य को भी जानते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद ऐसे बहुत से दृष्टांत हैं। जब शिला प्रभुपाद ने, हालांकि काफी वो दिव्य तरीके से शिला प्रभुपाद जी ने भविष्य के विषय में भी बताया बहुत से भक्तों को। एक भक्त वो शिला प्रभुपाद जी से बार बार पूछ रहे थे, प्रभुपाद मेरे पिताजी से मिलने जाना है। वो बुला रहे हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे थे नहीं कोई जाने की जरूरत। तो लेकिन वो बहुत कुछ इतने समय से बुला रहे हैं, एक बार। तो प्रभुपाद ने कहा जाओ बस स्टैंड पर, वहां पे मिलेंगे तुम्हें। उन्हें लगा शायद हो सकता है कि बस पकड़कर मैं जब जाऊं अपने घर में, तो फिर बस के सहारे जब घर पहुंचूंगा तो पिताजी की भेंट हो। वो जब गए तो आश्चर्यचकित हो गए, उनके पिताजी वहां पर थे बस स्टैंड। हालांकि हम शिला प्रभुपाद जी के सारे दृष्टांत बोलकर ये नहीं कहना चाहते कि वो कोई जादूगर थे, बहुत से ऐसे दृष्टांत। जैसे शिला प्रभुपाद जी जब जुहू में जो हरे कृष्ण लैंड उन्होंने खरीदा, और क्या कुछ नहीं करना पड़ा शिला प्रभुपाद जी को वो हरे कृष्ण लैंड खरीदने के लिए। वो जो मिस्टर नायर, जो सभी जानते हैं कि इसने कितने लोगों को फंसाया है, और इसी तरीके से वो उसी की जमीन थी वो, तो इसी तरीके से वो लोगों को फंसाता था। वो पहले जमीन का कॉन्ट्रैक्ट कराता था और उसके पश्चात फिर पैसे लेकर किसी न किसी तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर देता था, और फिर वो पैसे जाते रहते। और सभी जान रहे थे, देख रहे थे कि ये जो नायर है ये कपट कर रहा है, ये धोखा दे रहा है। और वो भी श्रील प्रभुपाद जी कौन सी जमीन के लिए उस समय। आज यदि आप जुहू में जाकर देखो तो वो बहुत प्राइम लोकेशन है बॉम्बे का उस समय, लेकिन वहां पर क्या था, दलदल, चूहे और मच्छर, बस और कुछ नहीं था वहां पर। तो तमाम कृष्ण महाराज और बाकी सारे श्रील प्रभुपाद जी के सीनियर डिसाइपल्स, वो जाकर श्रील प्रभुपाद जी को उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी ये जमीन क्यों हमें चाहिए, कौन आएगा यहाँ पे सबसे पहले यदि हमें ये जमीन मिल भी जाए तो, और वो भी ये नायर जो इतना धोखा दे रहा है हमें, क्यों हम इसके पीछे हैं, इस जमीन के पीछे। और प्रभुपाद जी ने कहा, मैं जो कह रहा हूं उसका पालन करो, मैं यहां पर तुम्हारे सुझाव सुनने के लिए नहीं बैठा, और यही बात कृष्ण बलराम मंदिर रमन रीति में हुई। आज यदि जो आप रमन रीति देखते हो, इतनी सारी दुकानें और कॉलोनी और बिल्डिंगें और इतने लोग रहते हैं, वहां का चौपाटी है वो रमन रीति वृंदावन का, वहां पर जो मकानों के रेट हैं वो कोई विश्वास नहीं करेगा। बंबई के रेट की तरह है वहां के मकानों के रेट, और वहां के नौकर चाकर उनके रेट भी बंबई के नौकर चाकरों से ज्यादा है, क्योंकि उनको केवल एक ही चीज दिखती है, डॉलर। अंग्रेज हैं और डॉलर हैं इनके पास। तो उस समय जब श्रील प्रभुपाद जी ने वो कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना करने के लिए जब वो जमीन ली, उस समय भी गुंडों को भेजा गया, गुंडे वहां पर आए, और वो भी कब, जब अनंत शेष की स्थापना हो चुकी थी उसके पश्चात गुंडे वहां पर आए, क्या कुछ वहां पर नहीं हुआ। फिर सारे शिष्य श्रील प्रभुपाद जी के पास गए कि ये जमीन क्यों, कौन यहां, उस समय भी कोई नहीं था वहां पर उस रमन रीति में, लोग डरते थे वहां पर, रिक्शा वाले जाने पर डरते थे उस जगह पर। आजकल तो चिल्लाते हैं अंग्रेज मंदिर अंग्रेज मंदिर, उस समय रिक्शा वाले डरते थे उधर जाने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी ने यही कहा, क्योंकि वो भविष्य में देख रहे थे, और आज वही शिष्य बैठकर जब वो याद करते हैं तो कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी सही थे। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों को जब दे रहे थे तो एक एक शब्द को तीन तीन दिन कई बार सोच सोच कर वो अनुवाद करते थे। क्यों? ये ध्यान में रखते हुए कि ये जो तात्पर्य है भक्ति वेदांत परपोट, ये आने वाले 10,000 वर्षों तक कैसे लोग समझेंगे, कि आने वाले 10,000 वर्षों तक इन तात्पर्यों को कलयुग के रहने वाले लोग कैसे इसे समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। इतने आगे सोचकर श्रील प्रभुपाद जी सोचिए, ऐसा नहीं कि अरे भाई मेरा जीवन तो पता नहीं और कितने वर्ष है, इसको तो स्थापित हो गया है, फिर किसको कौन पूछता है क्या होने वाला है इसके पश्चात, जल्दी जल्दी कर देते हैं अनुवाद और मेरा नाम हो जाएगा कि इतने पुस्तकों का अनुवाद मैंने कर दिया। ऐसा नहीं, श्रील प्रभुपाद जी हर एक डिटेल को देख रहे थे। यहां पर भी नारद मुनि हर एक डिटेल बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि धृतराष्ट्र अब कैसे अपनी बाहरी सांसों को रोकेंगे, इंद्रियों को वश में करेंगे, ये सारी चीजें बता रहे हैं। तो यदि ये सारी चीजें नारद मुनि युधिष्ठिर को बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, तो परीक्षित महाराज को ये सब डिटेल्स बताने की आवश्यकता क्या है। कई बार हमें लगता है कि भाई केवल भक्ति की चर्चा होनी चाहिए, केवल उन सब चीजों की चर्चा होनी चाहिए, कौन सी, कृष्ण प्रेम और रासलीला और गोपियों के साथ भगवान क्या क्या रास किए हैं और ये सब, ये क्या सांस अंदर बाहर रोकना, ये सब डिटेल परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को रोका नहीं, अरे अरे भाई ये सब क्या बता रहे हो, थोड़ा कुछ मधुर लीला बताओ, कृष्ण की 7 दिन ही मेरे केवल, ये सब, वो भी धृतराष्ट्र ने कौन सी सांस अंदर ली, कौन सी सांस बाहर निकाली, कौन से दिन वो राख बनने वाले हैं, अरे ये सब सुनने थोड़ी बैठा हूं। और ये तो ठीक है अष्टांग योग के विषय में कुछ, आगे आप सुनेंगे 5वें स्कंद में कि अलग अलग प्रकार के लोग जम्बू द्वीप में जब एक फल नीचे गिरता है आम का फल, तो वो नदी बन जाता है, तो परीक्षित महाराज मानो ये पूछे सुखदेव गोस्वामी, अरे भाई जम्बू द्वीप में आम का फल जब नीचे गिरता है नदी बनता है, मेरा उससे क्या संबंध? अरे इधर तक्षक आने वाला है 7 दिन बाद, और यहाँ पर आम और नदी और जम्बू द्वीप। तो भागवत में ये सब डिटेल क्यों दिया गया है? नारद मुनि जो कि शुद्ध भक्त महाजन, वो युधिष्ठिर महाराज को ये सब डिटेल्स क्यों बता रहे हैं? ये हमें समझाने के लिए कि भक्ति में यदि भगवान श्री कृष्ण को हमें प्रसन्न करना है तो हमें डिटेल्स पर ध्यान देना है। जो तथाकथित साधारण सी चीजें दिखती हैं वो साधारण नहीं होती। जैसे श्रील प्रभुपाद कृष्ण बलराम मंदिर की प्रदक्षिणा कर रहे थे सुबह के समय 7 बजे, दिन उग गया था, प्रदक्षिणा कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, और सारे भक्त प्रभुपाद के साथ प्रदक्षिणा कृष्ण बलराम के वृंदावन धाम में, वाह क्या सौभाग्य है। तो सभी पीछे पीछे जोर जोर से हरे कृष्णा प्रभुपाद को दिखा, हम भी हैं आपके पीछे। तो प्रभुपाद जी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, तुम सब अंधे हो। तो सभी एक दूसरे को देखने लगे, ये महामंत्र में कुछ बदलाव कैसे हो गया? तो सभी एक दूसरे को देखने लगे, शायद और कुछ सुना होगा हमने कहीं से। प्रभुपाद जी फिर से पूरी प्रदक्षिणा करते करते फिर से एक जगह पर आए, हरे कृष्णा सब अंधे है। सभी एक दूसरे को, भाई हम तो देख रहे हैं एक दूसरे को, अंधे कौन अंधा है यहाँ पे? तो फिर प्रभुपाद जी तीसरी प्रदक्षिणा वापस से हरे कृष्णा, कुछ दिखता नहीं सब अंधे। तो सभी भक्त एक प्रभुपाद आप किससे बात कर रहे हैं? प्रभुपाद यहाँ तुम सबसे बात कर रहा हूँ, आपने कहा अंधे कुछ दिखता नहीं, हाँ ये बल्ब जल रहा है, सूरज उग गया ये बल्ब जल रहा है, सब अंधे किसी को दिखाई नहीं देता। तो सभी भागे गए, अरे बल्ब बल्ब। गुरुदास प्रभु वो बताते हैं कि वो इतना कुछ सुने थे वृंदावन के विषय में श्रील प्रभुपाद के मुख से, तो अब पहली दफा भारत श्रील प्रभुपाद के साथ वो भी गुरुदास प्रभु आए, और दिल्ली में प्लेन लैंड हुआ, और पहली बार दिल्ली वो भी हस्तिनापुर है, अब वहां से वृंदावन 2 घंटे का रास्ता केवल। तो गाड़ी में बैठे श्रील प्रभुपाद जी आगे बैठे थे और गुरुदास प्रभु पीछे, तो अब वो इतना अंदर उनके अंदर उत्साह, पहली दफा वृंदावन, वो वृंदावन जिसके विषय में इतना सुना मैंने अमेरिका में प्रभुपाद के मुख से, वो दिव्य धाम में प्रवेश करने वाला हूँ वो भी प्रभुपाद के साथ, तो क्या क्या साक्षात्कार होगा सब कुछ मैं नोट करता हूँ। तो इतने उत्साह से वो बैठे हुए थे, तो गाड़ी कोशी से अंदर, फिर छटिकरा से फिर अंदर, अब वृंदावन में प्रवेश कर रही गाड़ी। तो वो देख रहे हैं वृंदावन, हाँ वृंदावन लिखा हुआ था ना 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वृंदावन। अब प्रभुपाद, और तब तक प्रभुपाद कुछ नहीं कह रहे थे, प्रभुपाद एकदम शांत थे, तो वो रेडी थे, अब वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं तो प्रभुपाद कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ कहेंगे। तो एकदम सचेत, और जैसे ही वृंदावन में गाड़ी ने प्रवेश किया, प्रभुपाद पीछे मुड़े, गुरुदास प्रभु, हाँ प्रभुपाद पीछे मुड़े कुछ कहने के लिए। और प्रभुपाद ने कहा सीमेंट। गुरुदास प्रभु वो सोचे लिखूं कि न लिखूं, ये कौन सी कृष्ण लीला से संबंधित है। तो उन्हें लगा शायद प्रभुपाद जी और कुछ सोचे, प्रभुपाद जी फिर से दिखे सीमेंट। तो वो सोच रहे ये प्रभुपाद के पहले शब्द वृंदावन में प्रवेश करने, पहली बार मैं प्रभुपाद के साथ और मैं क्या सुनूं सीमेंट दो बार। प्रभुपाद ने कहा कि यदि हमें यहाँ पे कृष्ण बलराम मंदिर स्थापित करना है तो सबसे पहले सीमेंट खरीदना होगा, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट ने सीमेंट के ऊपर रोक लगा दी थी। तो श्रील प्रभुपाद वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं परंतु सोच क्या रहे हैं सीमेंट। क्या वो कृष्ण स्मरण है या नहीं है? तो कल से हम सब सीमेंट के विषय में सोचने लगे। प्रभुपाद उसे भगवान श्री कृष्ण के संबंध में सोच रहे थे। तो हालांकि प्रभुपाद डिटेल, फिर से वो डिटेल, जैसे श्रील प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में एक मंदिर में प्रवेश किया और ऐसा लंबा लंबा चौड़ा मंदिर था, जैसे इतना लंबा मंदिर, इससे थोड़ा ज्यादा था, और जैसे हमारे गौर नेता के अर्च विग्रह है वैसे राधा कृष्ण के अर्च विग्रह इससे छोटे साइज के। और प्रभुपाद ने जैसे ही प्रवेश किया द्वार से तो सभी भक्त कीर्तन चल रहा है और प्रभुपाद को हार पहनाए जा रहे हैं, पुष्पांजलि, ये सब। प्रभुपाद पहली बार हमारे मंदिर में आए हैं और सब डेकोरेशन अच्छी तरीके से। प्रभुपाद ने जैसे ही प्रवेश किया दरवाजे से ऑल्टर की तरफ देखा, कृष्ण की आंख में क्या है? तो सभी भागे देखने के लिए, कृष्ण की आंख में क्या है? तो हुआ ये था कि जिन पुजारी ने छोटे से राधा कृष्ण उनके जो ड्रेसिंग किया था तो उन्होंने चंदन लगाया था और वो चंदन पिघलकर भगवान की आंखों में जा रहा था। और प्रभुपाद वहां से दरवाजे से प्रभुपाद देखकर कह रहे हैं कृष्ण की आंख में कुछ है। इतना सब कुछ, हार, पुष्पांजलि, वो सब के विषय में कुछ प्रभुपाद देखे। तेजस प्रभु वो कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी दिल्ली आए और प्रभुपाद जी की गुरु पूजा, सब भक्त वहां पर एकत्रित हैं, सब जगह से, मायापुर से और वहां से अब वृंदावन फेस्टिवल के लिए सब लोग जा रहे हैं तो हजारों की संख्या में, और प्रभुपाद के साथ भी इतने सारे भक्त आए और अब प्रभुपाद जी व्यासासन पे बैठे, कीर्तन चल रहा है और माइक सामने प्रभुपाद के, और तेजस प्रभु आते हैं प्रभुपाद को हार डालने के लिए। तो हार डालने को आते हैं तो प्रभुपाद ने माइक रोक दिया, पैसा बीबीटी में ट्रांसफर किया कि नहीं? तो वो हाथ में हार लिए और सभी भक्त बैठे हैं, प्रभुपाद ने रोक कर पूछा पैसा ट्रांसफर किया बीबीटी में? उन्हें कहा हाँ प्रभुपाद, अब डालो। तो प्रभुपाद ये सब डिटेल्स देख रहे थे। और कितने ऐसे दृष्टांत हैं, एक मंदिर में प्रभुपाद गए और उन्होंने कहा कि भगवान बहुत कमजोर दिख रहे हैं, यहाँ पर नहीं, भगवान बहुत थके हुए दिख रहे हैं। तो हुआ ऐसा था कि उस मंदिर के टेंपल प्रेसिडेंट ने किया ऐसा कि सभी भक्तों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजना है, तो मॉर्निंग प्रोग्राम 9 बजे तक, फिर प्रसाद लेकर 9:30-10 बज जाते थे। तो उन्होंने ये सोचा कि हम मंगल आरती जल्दी कर देते। तो उन्होंने मंगल आरती 5 के बजाय 4 बजे कर दी। तो 4 बजे मंगल आरती होगी तो सबका जब पहले हो जाएगा, सब 8 बजे फ्री होके बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकल जाएंगे। तो ये उन्होंने मंगल आरती 5 के 4 कर दिया। तो 4 बजे मंगल आरती है तो भगवान को फिर 1 घंटा पहले उठाया। तो प्रभुपाद को इसके बारे में कुछ पता नहीं। प्रभुपाद जी आए मंदिर में, जैसे अर्च विग्रह को देखा, प्रभुपाद ने कहा बहुत थके हुए लग रहे हैं भगवान। तुरंत टेंपल प्रेसिडेंट ढूंढने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि मैं कोई साधारण व्यक्ति से नहीं डील कर रहा, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए विष्णुजन महाराज, जब विष्णुजन महाराज वो प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को भक्त बनाया जो आज है इंद्रदुम्न महाराज, जिनके विषय में सुना होगा। तो उस समय तमाल कृष्ण महाराज और विष्णुजन महाराज वो राधा दामोदर बस पार्टी के थे। तो उस समय इंद्रदुम्न महाराज संपर्क में आ ही थे विष्णुजन महाराज के। तो उन्होंने विष्णुजन महाराज से ये प्रश्न पूछा था कि आप लोग ये सब ये दंडवत देना और ये प्रार्थनाएं बोलना खाने से पहले, ये सब चीजों पर इतना जोर क्यों देते हैं? अंदर प्रेम होना चाहिए, सब बाहरी चीजें करने की क्या आवश्यकता है? तो विष्णुजन महाराज ने बहुत ही सुंदर वाक्य तमाल अपने इंद्रदुम्न महाराज को कहा था। उन्होंने कहा फॉलोइंग डिटेल्स इज साइन ऑफ लव, कि ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, जब इन पर हम गौर देते हैं, ध्यान देते हैं, तो ये हमारे प्रेम दर्शाने का लक्षण है कि नहीं? जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उस व्यक्ति के लिए कुछ लेकर आता है, उसके सालगिरह पर फूल भी लाए, यदि याद भी रखे तो आजकल अरे याद रखा, मेरी जन्म तारीख तुमने याद रखी। पति पत्नी में देखा जाता है, यदि याद ना रखो तो फिर है ना। इसलिए कहा गया है कि यदि पतिदेव को अपनी शादी की सालगिरह याद रखनी है तो 1 साल वो भूल जाए तो फिर याद रहती है, पूरे जीवन भर याद रहेगी उसे। तो ये देखा गया है कि यदि केवल याद भी कर उस व्यक्ति को बधाई दे दे कि अरे आज तुम्हारा जन्मदिन मुझे याद है, तो उसमें भी वो व्यक्ति वो डिटेल है, या एक फूल लाकर दे दिया या कुछ भी, वो डिटेल है। परंतु उस डिटेल को ध्यान रखने पर उस व्यक्ति के अंदर कितना आदर सत्कार उत्पन्न होता है। अब देखिए भगवान की लीलाओं में भी हम देखेंगे तो हालांकि हम कहते हैं कि भगवान भक्ति 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 मांग रहे हैं और कुछ नहीं चाहते, परंतु भगवान ने वो भक्ति के पहले क्या कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। यदि वो डिटेल कहने की आवश्यकता नहीं थी तो भगवान केवल ये कह देते भक्ति 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 भक्ति। क्यों भगवान ने कहा कि एक पुष्प एक फल उसे अर्पित करो? सुदामा हालांकि इतने भक्ति रखे थे परंतु भगवान ने कौन सा डिटेल देखा, वो पोहे। अब देखिए कई बार हम ये दोनों एक्सट्रीम में चले जाते हैं कि ये सोचते हैं कि भगवान शायद पोहा से प्रसन्न होते हैं, तो दिन रात भगवान को केवल पोहा पोहा पोहा। यदि मेरा एक रूम किचन का फ्लैट है और मुझे बड़ा बंगला चाहिए, तो सुदामा ने क्या किया था? पोहा ऑफर किया था। तो यदि मुझे भी बड़ा बंगला चाहिए तो मैं अब भगवान को रोज पोहा ऑफर करूँ, और वो भी पड़ोसियों से लाया हुआ, और वो भी चिथड़ों में बांधा हुआ। तो भगवान फिर प्रसन्न होंगे, मेरा एक रूम किचन का जो फ्लैट है बंगले में परिवर्तित हो जाएगा। तो एक ये एक्सट्रीम है, हम सोचते हैं कि भगवान को प्रसन्नता पोहा देती है, या फिर अरे पोहा सब फालतू, भक्ति होना चाहिए, कुछ अर्पित करने की जरूरत नहीं, मन में भक्ति होनी चाहिए, ये सब क्या दिखावा प्लेट में पोहा डाल के भगवान के सामने। अरे भक्ति होगी तो भगवान सब जान जाएंगे, अंदर होना चाहिए पोहा। तो ये दूसरा एक्सट्रीम, जब लोग कहते हैं कि भक्ति रखो भाई, ये सब दिखावा क्या, ये माला सब दिखाना बाहर से। अब देखिए भगवान ने सुदामा की लीला में दोनों का बैलेंस होना चाहिए, भक्ति के साथ भक्ति का जो डिटेल्स है उसका पालन होना चाहिए, शबरी के बेल। कि कोई व्यक्ति अब ये सोचे कि भाई भगवान तो केवल झूठे भेद, उसी में आनंद लेते हैं। और उदाहरण है कुब्जा, कुब्जा ने क्या अर्पित किया? चंदन। अब कुब्जा चाहे मन भर चंदन अर्पित करती भगवान को, परंतु भगवान उसमें प्रसन्न नहीं होते। कुब्जा ने कौन सा चंदन अर्पित किया? वो चंदन जो कुब्जा कंस के लिए ले जा रही थी। तो इसमें यदि हम देखें तो चंदन वास्तविक रूप में भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहा था और कर भी रहा था, दोनों बात सत्य है। कि यदि कुब्जा केवल भगवान को ये कह देती कि मैं अपने मन में आपको कंस को देने वाली जो चंदन वो आपको अर्पित कर रही हूं, या चंदन छोड़ो, चंदन से चंदन का पूरा पेड़ या पूरा बागीचा या पूरा चंदन का वन नहीं, वो जो थोड़ा सा चंदन व्यक्तिगत रूप से, वो फिजिकली जब चंदन अर्पित किया कुब्जा ने, और उसके साथ उसकी क्या धारणा थी। कुब्जा उस समय ये नहीं देख रही थी और ये नहीं जानती थी कि मेरी जो बीमारी है वो ये ठीक करने वाले, कुब्जा नहीं जानती थी। कुब्जा ने चंदन क्यों अर्पित किया कृष्ण बलराम को? केवल ये देखते हुए कि ये इतने सुंदर दिखने वाले दो पुरुष, ये चंदन तो इनके लिए होना चाहिए, क्या है वो कम्स? बस भगवान कृष्ण बलराम की सुंदरता को देखते हुए वो चंदन उनको दे दिया, और उसके पश्चात फिर भगवान ने अपनी कृपा कुब्जा को दी। तो भगवान ने वो डिटेल देखा और डिटेल के साथ भक्ति दोनों देखी भगवान ने। चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला चल रही है, सभी चैतन्य महाप्रभु के बड़े बड़े पार्षद एकत्रित हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की महाप्रकाश लीला, जो कि कितने समय तक चली? 21 घंटे। और ये एक ऐसी लीला है जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुख से अपने आप को भगवान कहा, जो सब पार्षद कह रहे थे और वो सबको बताना चाहते थे, इसी लीला में चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री विष्णु के आसन पर वो स्वयं बैठे और कहने लगे कि ये अर्पित करो, पूरा मेरा अभिषेक करो। तो सभी अब वहां पर जो अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनका अभिषेक और कौन कौन सब पंच तत्व वहां पर उपस्थित हैं, बड़े बड़े पार्षद भगवान के आध्यात्मिक संसार के वो वहां पर उपस्थित है, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने किस पर गौर किया? दुखी। और वो कौन थी? वो दुखी थी कौन? वो केवल एक साधारण सी कोई नौकरानी टाइप महिला जिसका नाम भी कोई जानता नहीं था ज्यादातर। और वो कर क्या रही थी? ये सारे जो पार्षद भगवान का अभिषेक कर रहे थे गंगा जल से, तो वो केवल गंगा नदी से मटके भर भर कर, वो भी कक्ष के बाहर जहां महाप्रकाश लीला हो रही है उसके बाहर वो केवल रख रही थी, वो अंदर भी नहीं आ रही थी। और किसी को पता नहीं था कि ये गंगा जल कहां से आ रहा, क्योंकि सभी अपना ध्यान केंद्रित किए थे चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। सभी ध्यान केंद्रित किए थे चैतन्य महाप्रभु के ऊपर और महाप्रकाश लीला अभिषेक और इन सब के ऊपर। इसे ध्यान भी नहीं था कि गंगा जल आ कहां से रहा है, कौन इतने ठीक समय पर गंगा जल ला ला कर दे रहा है। सबके पीछे चैतन्य महाप्रभु ने उस दुखी को देखा और उठकर उस दुखी को जाकर अपनी कृपा दी और उसे सुखी बनाया। क्या देखा चैतन्य महाप्रभु ने? डिटेल। महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु सभी पार्षदों को कहते हैं श्रीधर को बुलाओ। सभी देखने हैं श्रीधर कौन है, ये कोई जानता भी नहीं श्रीधर कौन है। श्रीधर खोलवेज वो एक ऐसे पार्षद भगवान के कि केवल उस समय भगवान ही जानते थे उनको और कोई जानता नहीं था। इतने साधारण से व्यक्ति वो, और केवल केले के पत्ते और वो सब कुछ बेचते, रहने के लिए झोपड़ा सा वो भी टूटा हुआ, वो भी ठीक झोपड़ा नहीं। तो उन श्रीधर कोलवेज को याद किया श्री चैतन्य महाप्रभु। क्यों? क्योंकि श्रीधर कोलवेज प्रसन्नता देते थे चैतन्य महाप्रभु को जब बचपन में निमाई पंडित के रूप में चैतन्य महाप्रभु जाते थे। तो वहां पर भी डिटेल चैतन्य महाप्रभु श्रीधर कोलवेज को याद कर रहे हैं और बुला रहे हैं और सभी को बता रहे हैं, जो जो भक्त वहां पर उपस्थित हुए सबको उनके जीवन में क्या क्या डिटेल चैतन्य महाप्रभु सब याद कर बता रहे हैं। वो कौन से भक्त थे जिनको चैतन्य महाप्रभु ने बचाया था? गंगादास पंडित। गंगादास पंडित को याद दिला रहे हैं कि याद है डकैत मुसलमान तुम्हारे पीछे भागे थे और तूफान आंधी नदी पार करना था तुम्हें, मैं नाविक के रूप में आया, एक नाविक आया था, वो नाविक याद है कौन था? वो मैं था। तो भक्ति में हमें सचेत रहना है, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने संस्था का नाम क्या दिया है? कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस का अर्थ क्या है कि हमें हर पग पर भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो भी वस्तु, जो भी व्यक्ति और जो भी स्थिति, ये तीन याद रहेंगे, वस्तु व्यक्ति और स्थिति, ये जो भगवान से संबंधित हैं, इन्हें सचेत तरीके से कॉन्शियसली हमें ध्यान में रखते हुए हमारी भक्ति करनी है। नहीं कि मेरी 16 माला हो गई अब क्या, तो ठीक है भगवान प्रसन्न हो गए आज के दिन, अब चाहे कोई भक्त तकलीफ में है या कोई कार्यक्रम ठीक से नहीं हो रहा, मेरा तो हो गया ना 16 माला, मेरी साधना हो गई। तो कई बार हम मंदिर में भी भगवान की कुछ सेवाओं में लगे रहते हैं, परंतु हम केवल जो मुझे सेवा बताई गई है, अथॉरिटी ने जो बताया है मुझे, क्या बताया है, आलू काटो, तो मुझे अथॉरिटी ने बताया है कि आलू काटो, तो आलू काटते रहेंगे काटते रहेंगे काटते रहेंगे। ये कभी पूछा नहीं कि भाई कितने आलू काटो, इसका साइज कैसा होना चाहिए, और आप कृपया देखो मैं ठीक से कर रहा हूं कि नहीं। चाहे कोई भी सेवा हो, हर सेवा के पीछे यदि हम कॉन्शियसली कृष्ण कॉन्शियसली वो सेवा नहीं करेंगे तो आलू तो कट गए परंतु वो सेवा नहीं हुई। फिर वो फिर हम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा अनकॉन्शियसनेस, उसमें केवल आलू कटे हैं। नासिक में रोज बहुत आलू कटते हैं परंतु वो सेवा नहीं हो रही। तो सेवा किसे कहते हैं, जब हम कॉन्शियसली अपनी भावना उसमें डालकर प्रेम से जब उसे करते हैं और ये देखते हुए कि ये आलू का टुकड़ा पता नहीं कितने जन्मों से घूम घूम कर आया होगा और अब भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर पहुंचने वाला है, और मैं माध्यम बन रहा हूं। ये कृपा देखिए, किशल प्रभुपाद और पूर्वज आचार्य मुझे माध्यम बना रहे हैं कि ये आलू का टुकड़ा इतने ब्रह्मांड भ्रमिते होकर ये अब भगवान के चरणों पर पहुंचने वाला है। कई बार तो हमारी भावना क्या होती है, ये आलू का टुकड़ा आज मेरे अंदर पहुंचने वाला है, तो मुंह में छाले हुए तो थोड़ा ज्यादा छोटा काटो होता, अच्छा तो अच्छी से पक जाएगा तो खाने में अच्छा आसानी होगी। या बड़ा बड़ा काटेंगे तो जल्दी हो जाएगा, तो प्रसाद जल्दी बनेगा, जल्दी भोग लगेगा, तो आज जल्दी हो जाएगा। तो वो छोटा छोटा काटने में टाइम जाता है, फिर ऑफरिंग लेट होगा सब, मुझे भी लेट मिलेगा ऐसा, तो जल्दी जल्दी खत्म करो इसको। वो उनका नाम क्या था, राघव पंडित, उनके विषय में कहा गया है कि वो क्या क्या डिटेल फॉलो करते थे राघव पंडित। कि नारियल अर्पित करते थे भगवान को, और वो भी ऐसा नारियल, इतना उत्कृष्ट नारियल जो कि 20-25 किलोमीटर दूर से मंगाया जाता था भगवान को अर्पित करने के लिए नारियल। तो उन्होंने देखा कि एक दिन उनके पूजा घर में जब पुजारी नारियल अर्पित करने जा रहा, तो उसने अपना हाथ वो चौखट के ऊपर रखा अंदर जाने से पहले, और वही हाथ से फिर वो नारियल अर्पित करने गया। रोक दिया राघव पंडित, कहा कि ये नारियल अशुद्ध हो गया। कैसे अशुद्ध हो गया, क्योंकि तुमने अपना हाथ चौखट के ऊपर स्पर्श किया। अरे लेकिन ऊपर स्पर्श किया, हाँ, क्योंकि जब लोग चलते हैं तो चलने के वजह से धूली उड़ती है, और वो धूली हो सकता है कि वो चौखट के ऊपर जमी हो। कौन सी धूली, नीचे जमीन की पैरों की धूली चौखट के ऊपर जमी हो, और तुमने उस चौखट को स्पर्श किया, उस बिना अपने आप को साफ किए हाथ धोए तुम जाकर वो नारियल को स्पर्श किए, फेंको, सब बेकार हो गए नारियल। इसे 25 किलोमीटर दूर से लाए थे हम, इतना उत्कृष्ट नारियल फेंक दो, रिजेक्ट, ये नहीं अर्पित हो सकता भगवान, ये उनका स्टैंडर्ड। तो यदि राघव पंडित आ जाए हाँ। श्रील प्रभुपाद जी ने जब अर्च विग्रह डीटी वर्शिप के सारे रूल्स अपने शिष्यों को बताए तो उन्हें इतना सब कुछ करना पड़ता है। प्रभुपाद ने कहा मैंने तो केवल 2% बताया तुम्हें, अगर मैं पूरा 100% तुम्हें बताऊ तो तुम बाथरूम से बाहर ही नहीं निकल सकोगे। कि अर्च विग्रह करने जाने के लिए बाथरूम में कैसे प्रवेश करना, शौचालय कैसे करना, स्नान कैसे करना, किस दिशा में कौन सा मंत्र, कितने समय तक, कैसे पानी से, कैसे तिलक, ये सब कुछ यदि बताऊं मैं तो तुम तो बाथरूम से बाहर ही नहीं निकलोगे, या यू विल फेंट। प्रभुपाद ने कहा इफ यू हियर ऑल द रूल्स। परंतु ये नहीं कि जब चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया कि तत्रार्पित नियमित स्मरणे न कारक, कोई नियम नहीं पालन करने की जरूरत, तो ठीक है। अरे भाई भक्ति होनी चाहिए, आचमन किया या न किया, जो भी है, आलू बड़ा है या छोटा है, भक्ति बड़ी होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है नहीं, वी हैव टू बी कृष्णा कॉन्शियस, कॉन्शियस ऑफ द डिटेल्स। श्रील प्रभुपाद जी की आरती हो रही थी और श्रील प्रभुपाद जी ने एक भक्त को दूर से देखा और बीच में आरती के बीच में उन भक्त को बुलाया, तुम्हारे पैर में क्या हो गया? तो अभी सभी वहां पर प्रभुपाद की आरती हो रही और ये भक्त ने कहा वो थोड़ी सी चोट लग गई। तो प्रभुपाद अब वहां पर सब कुछ रोक के बता रहे हैं कि उस पर क्या लगाना चाहिए, बताओ कहां पे लगाया, फिर उसको ये लगाओ, ये लेप करो, ये जड़ी बूटी, ये सब कुछ। तो सभी रुके हैं, प्रभुपाद जी ये सब डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे दृष्टांत हैं, परंतु हमें इन सब से सीखना क्या है? जैसे यहां पर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को डिटेल बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र ने क्या क्या किया भगवत प्राप्ति के लिए, कौन सी सांस अंदर गई, कौन सी सांस बाहर गई, कैसे वो उस अष्टांग योग पद्धति का पालन कर रहे हैं, ये सब डिटेल युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। और कौन है युधिष्ठिर महाराज? स्वयं धर्मराज, उनको ये पूरा डिटेल बता रहे हैं। तो इसलिए हमारी भक्ति, जो हम थोड़ी बहुत साधना भक्ति में लगे हैं, हमारी साधना भक्ति में भी हमें सचेत रहना है, सचेत रहकर हमें हमारी साधना भक्ति करनी है। जैसे मंदिर में भी जब हम आते हैं तो हमें मंदिर में भी हर वस्तु को भगवान से संबंधित मानना चाहिए, कि यदि कोई वस्तु किसी जगह पर ठीक से रखी हुई नहीं है तो उसे ठीक से रखना दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। और यदि कोई वस्तु किस जगह पर होनी चाहिए और नहीं है, ऐसा नहीं कि केवल जो जिसे सेवा दी गई है उसी का उत्तरदायित्व है ये, कि भाई मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं तो दर्शक बनकर आऊंगा मंदिर में, स्पेक्टेटर, जो शो चलेगा अच्छी से देखेंगे, हाँ देखो आरती में गलती कर रहा है, देखो अगरबत्ती नहीं है, माचिस नहीं है, तीली नहीं है, भागो 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 भागो। तो कई बार हम स्पेक्टेटर बन के मंदिर में आते हैं कि हाँ आरती के लिए माचिस नहीं है, तीली नहीं है, और कैसे भाग रहे हैं देखो, भूल गया, कई बार हंसते रहते हैं, भूल गया देखो आचमन नहीं है। तो ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हमें हर डिटेल को देखना है, कि ये समझना है कि मेरे वजह से आरती प्लेट में अगरबत्ती नहीं है, क्योंकि मैं सचेत नहीं हूं, मेरे वजह से यहां पर किसी चीज की कमी हो रही है। तो इसलिए हालांकि बाहर के लोग आएंगे, वो दर्शक बनकर देखकर चले जाएंगे और देखेंगे क्या कि सब भागते रहते हैं यहां वहां, कोई यहां कुछ कमी नहीं, कुछ ये नहीं, वो नहीं, हर समय कुछ न कुछ बताते रहना पड़ता है, भागते रहते भागते रहते। सत्स्वरूप महाराज वो अपने जपा रिफॉर्म बुक में लिखते हैं, वो कहते हैं कि आप यदि किसी को कहो कि श्रील प्रभुपाद का आरती प्लेट बनाओ, तो उसे बताओ कि आरती प्लेट में क्या क्या होना चाहिए, अगरबत्ती, दिया, शंख, ये सब कुछ होना चाहिए, तो उसे लिस्ट दे दो, बताओ ऐसे ऐसे होना चाहिए, कौन सी चीज कहां पर होनी चाहिए। तो मानो वो दूसरे दिन जब आरती प्लेट बनाकर लाता है तो हो सकता है भूल जाए कुछ, शंख भूल जाए, तो आप फिर से कहो शंख भूल गए तो हो सकता है उसके अगले दिन भी वो शंख भूल जाए, तो फिर से याद दिलाओ शंख भूल गए, देखो चौथे दिन भी वो भूल जाए, चार दिन आपने चार दिन लगातार उसे याद दिलाया शंख भूल गए, शंख भूल गए। तो सत्यरूप महाराज लिखते हैं कि मानो ये व्यक्ति आरती प्लेट साल भर बना रहा है और वो हर दिन शंख भूल रहा है, तो क्या कहोगे उसे कि इतना इम्पोर्टेंट आइटम आरती प्लेट का वो तुम पूरे साल भर हर दिन भूल रहे हो। तो सत्यरूप महाराज कहते हैं दिस इज कॉल्ड इनअटेंशन इन चैंटिंग, कि जब हम हमारे साधना भक्ति कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन में लगे हैं, तो वही गलती को बार 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 करते रहना जिसके विषय में इतना इतनी बार हम सुने हैं। क्या है वो दसवां अपराध? इतनी बार सुनने के पश्चात भी विषयाशक्ति बनाए रखना, तो ये तो केवल विषयाशक्ति के विषय में कहा गया, यहां पर तो हम केवल कुछ डिटेल के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो ये समझना चाहिए कि जब हम विशेष रूप से मंदिर में आते हैं तो मंदिर में हमें ये समझना चाहिए कि मैं यहां पर एक सेवक के रूप में आ रहा हूं, एक दर्शक के रूप में नहीं। आई एम नॉट कमिंग एज अ स्पेक्टेटर, आई एम कमिंग एज सर्वेंट। और ये जो सेवक है वो हर समय सचेत रहता है कि कौन सी मैं चीजें करता रहूं ताकि मेरे जो स्वामी हैं उनको तकलीफ न पहुंचे। तो अंततः आज के श्लोक से हम क्या सीखे हैं? विष्णुजन महाराज ने जो इंद्रदुम्न महाराज को कहा, Attention to details is sign of love. और हम सब क्या पाना चाहते हैं? कृष्ण प्रेम। और यदि वो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? Attention to details. हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हमारे अंदर एक बात है कि जब कोई व्यक्ति गलती करता है तो वो डिटेल को याद रखते हैं। उस डिटेल को पूरा अच्छे से याद रखते और तुरंत उसे उंगली कर बताते हैं, देखो तुम्हारी धोती कहाँ जा रही है। परंतु हमें हमारी धारणा शुद्ध होनी चाहिए और यही नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को धृतराष्ट्र के विषय में बता रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा प्रश्न है। श्रील प्रभुपाद ने डिटेल के ऊपर ध्यान दिया, एक एक शब्द को इतने गौर से तीन तीन दिन कई बार लगाकर अनुवाद किया, तो हो सकता है कोई पूछे कि श्रील प्रभुपाद केवल दशम स्कंद तक पहुंच पाए, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम डिटेल पर ध्यान दें, आलू काटने बैठे हैं, आलू का साइज मैंने लेक्चर में सुना तो वो जब तक वो साइज नहीं, तो वो एक टुकड़े को लेकर चारों तरफ से आधे घंटे तक, और फिर उसका साइज दूसरे आलू के साइज के बराबर है, स्केल लेकर आओ, ये एक इंच का है, एक इंच, वन इंच बाय वन इंच का, वो भी वन इंच बाय वन इंच, उसे स्केल, नहीं 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 आधा इंच ज्यादा हो गया और काटो थोड़ा। तो संडे फीस्ट हो गया, सब फीस्ट होके चले गए, हम आलू लेके बैठे हैं अभी तक। नहीं, उसके साथ हमें हमारी बुद्धि भी लगानी है कि एक गुरु प्रामाणिक होना चाहिए और एक शिष्य वो बुद्धिमान होना चाहिए। तो बुद्धिमत्ता लगानी चाहिए, और उसे कहते हैं मैच्योरिटी, कि कौन सी स्थिति में हमें चीज को बैलेंस करना है कि नहीं। और बहुत सी ऐसे दृष्टांत हैं श्री प्रभुपाद जी के जीवन में, जब प्रभुपाद ने डिटेल्स का उल्लंघन किया किसी दूसरे हायर प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश करने के लिए। जैसे कि एक व्यक्ति, ब्रह्मानंद प्रभु ये दृष्टांत बताते हैं कि एक व्यक्ति पहली बार श्री प्रभुपाद से मिलने आए, और उस समय श्री प्रभुपाद ने देखा कि प्रसाद नहीं था देने के लिए उन व्यक्ति को, तो श्री प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद प्रभु से कहा देयर इज नो प्रसाद हियर, और वो व्यक्ति जा रहे थे, उनको लेट हो रहा था, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा somehow give प्रसाद to this devotee, to this person, devotee तो नहीं थे। तो ब्रह्मानंद प्रभु गए, कहीं पर भी प्रसाद नहीं, एक ही जगह पर ऑफरिंग चल रहा था, तो वो अंदर ऑल्टर में गए, ऑफरिंग प्लेट से स्वीट उठाए, और पुजारी इतना क्रोधित हो, यही क्या कर रहे, और जाकर वो व्यक्ति गेट के बाहर निकल गया था। तो ब्रह्मानंद प्रभु भागे गेट के बाहर और उसे बुलाए, और व्यक्ति ने पीछे देखा और उसे वो प्रसाद दिया। और ब्रह्मानंद प्रभु कहते हैं कि मैं आश्चर्यचकित हो गया, जैसे ही मैंने उस व्यक्ति को प्रसाद दिया वो व्यक्ति अदृश्य हो गया, उनके सामने वो देखना चाहता था कि प्रसाद प्राप्त करने के बाद क्या उसकी प्रतिक्रिया है, ब्रह्मानंद प्रभु देख नहीं पाए उस व्यक्ति को। तो फिर वो जब पहुंचे श्रील प्रभुपाद के पास, तो श्रील प्रभुपाद ने पूछा डिड यू गिव हिम प्रसाद, उन्होंने कहा यस प्रभुपाद आई कुड गिव हिम प्रसाद, प्रभुपाद का यू नेवर नो हु कम्स हियर। तो हालांकि यहां इंपॉर्टेंट डिटेल का उल्लंघन किया, लेकिन प्रिंसिपल समझा, सिद्धांत, तो हमें सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में गोविंद, चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हुए वो जब बेहोश हो गए और वो चौखट पर ले, तो कथा हम जानते हैं कि वो चैतन्य महाप्रभु के शरीर के ऊपर अपना पैर लांगते हुए वो गए, क्यों, चैतन्य महाप्रभु की मालिश करने के लिए, और उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु कई घंटों तक लेटे वहां पर, प्रसाद हो गया, सब कुछ हो गया, तो हम प्रसाद लेने के लिए लांग कर चले जाएंगे। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने बाद में पूछा कि भाई तू अब तक यहीं पर बैठे हो, सबका प्रसाद हो गया, तुम गए, तो उन्होंने कहा वो तो आपकी सेवा है, तो परंतु खुद के इंद्रिय भोग के लिए मैं ये नहीं कर सकता, तो हमें वो मैच्योरिटी यूज करना है। इसलिए तो वो दोनों एक्सट्रीम में नहीं जाना, भगवान को केवल पोहे अच्छे लगते हैं, वही तो केवल पोहे के पर इसलिए प्रभुपाद ने जो कृष्णा बुक है वो बीच में रोककर श्रील प्रभुपाद ने कृष्णा बुक दे दिया, तो पूरा दशम स्कंद श्रील प्रभुपाद ने कृष्णा बुक में दे दिया। तो प्रभुपाद ने उसमें बैलेंस किया कि प्रभुपाद ने दशम स्कंद शुरू भी किया डिटेल में, परंतु सर्वसाधारण जनता के लिए कृष्ण बुक दशम स्कंद के रूप में या दशम स्कंद कृष्ण बुक के रूप में दे दिया। गुड क्वेश्चन। और कोई प्रश्न? इसमें भी अष्टांग योग से क्या कनेक्शन आपको नजर आएगा, परंतु नारद मुनि बता रहे और पांचवें स्कंद में भी बताया गया है कि उसका कृष्ण से कनेक्शन क्या है, कि कृष्ण की सृष्टि है ये जम्बूद्वीप, वो कृष्ण की सृष्टि है। तो भगवान की सृष्टि के विषय में बचाकर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि ये भगवान जब इतना भगवान के विषय में जो सुना कि भगवान की सृष्टि में एक ऐसा जम्बूद्वीप है जहां पर ऐसी चीजें हो रही हैं, ये भगवान के विषय में जब दशम स्कंद में बताते हैं कि ये भगवान पहले ही सुना देते तो परीक्षित महाराज तो ठीक है ना, ये जो कि जम्बू द्वीप की सृष्टि करता है हालांकि आप भक्ति के बहुत ऊंचे स्तर पर हैं, हम सब जानते हैं, कभी कभी थोड़ा डिटेल्स फॉलो करना चाहिए आपको भी। हाँ बोलिए। हाँ वो इसलिए कि वो सब वर्णन दूसरे स्तंभ में देने के बाद फिर कहा है कि जिसको इसके प्रति आकर्षित होना है वो इसके प्रति आकर्षित हो, और है इन सब चीजों से, तो उसे बताने के लिए एक नेगेटिव एग्जाम्पल कई बार दिया जाता है कि भगवान की भक्ति कितनी ऊंची है, उसे बताने के लिए बताया जा रहा है कि यदि ये सारी चीजों के लिए देवताओं के पास जाना पड़ता है तो सोचिए भगवान की भक्ति करने के लिए कोई सर्वसाधारण तरीके से प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि किसी को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए या धन चाहिए, उसके लिए भी उसे क्या कुछ नहीं करना पड़ता, किसी देवता को प्रसन्न करना पड़ता है। तो भगवान की भक्ति करने के लिए हमें केवल पीछे बैठकर हाँ भक्ति आ जाएगी एक दिन नहीं, तो हर जो मुद्दा है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं उसके पीछे गूढ़ कारण है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ने चाहिए, और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों में प्रभुपाद लिखते हैं कि यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ऐसा क्यों बता रहे हैं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की శ్రీల ప్రభుపాదకి నితాయ గౌర ప్రేమానందీ.